के वहाँ एक एक अंतर्मुख वाले परिणाम होते हैं। वो तीन का नाम है अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण। इसका विस्तार तो हम बाद में देखेंगे, पहले में पहले ये तीनों ही का काल अपना अपना एक एक अंतर्मुख होता है। उसमें से अनुवृत्तिकरण काल का काल सबसे छोटा है, उससे अपूर्वकरण का काल बड़ा है और उससे भी अधः प्रवृत्तकरण का काल बड़ा है। जीवों में क्या होता है कि एक जीव की अपेक्षा विचार करेंगे तो उसकी अपने तो विशुद्धि पूर्व समय में वो तो प्रत्येक समय में उसकी विशुद्धि अनंत गुना बढ़ती जाती है। इस कारण और क्या बातें बनती है, कर्मों में भी क्या बातें बनती है, तो हमने देखा था कि अपूर्वकरण में चार आवश्यक होते, यानी चार बातें बनती है। अगर प्रवृत्तकरण में चार बातें बनती है कौन कौन सी, तो विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणी बढ़ती है, स्थिति बंधाकरण होता है, प्रशस्त कर्मों का जो अनुभव है वो तो प्रति समय अनंत गुणा बढ़ता हुआ चतुस्थानगत होता है, और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभव प्रति समय अनंत गुणा घटता हुआ वैसे द्विस्थानगत हो जाता है। ये बातें हमने यहाँ देखी थी। इसमें ये भी बात हमने देखी थी कि भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा से अगर हम तुलनात्मक देखें तो किसी जीव के पहले दूसरे या नीचे के समय वर्ग के जो परिणाम है वो तो अन्य किसी जीव के बाद में होने वाले ने ऊपर के समय वर्ग के जो परिणाम है उसमें समानता हो सकती है। नीचे के और ऊपर के समयों में परिणामों की जो समानता है उसके कारण ये जो परिणाम है उसका नाम है अधः प्रवृत्तकरण। ये जो समानता पाई जाती है उसका नाम है अनुपृष्टि रचना। अब हम अपूर्वकरण का स्वरूप देखेंगे। हमने ये भी बात देखी थी कि अधः प्रवृत्तकरण में असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग परिणाम होते हैं। जीव अनंत है ना, तीनों काल के जीवों की संख्या ली। करण लब्धि मानने वाले तीनों काल के जो जीव है वो अनंत है और उनके परिणामों की संख्या की अपेक्षा विचार करेंगे तो असंख्यात लोक प्रमाण है। तो असंख्यात लोक कैसे लिखना है इसके यहाँ एक सैंपल यहाँ बताया है। जब एक लाइन लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है सात राज्य, इसको कहते हैं श्रीन जगत श्रीन जब दो लाइन लिखते हैं, ये तो कोड लैंग्वेज है, सिंबल है, इसको संदृष्टि कहते हैं। दो लाइन का अर्थ होता है सात राज्य गुना सात राज्य, कितना हुआ 49, कितना स्क्वेयर राज्य होगा। हाँ, आप घर खरीदी करते हो तो स्क्वेयर कितने लेते हैं ना, खाली फीटों में लेते हैं। तो गुना करना है ना, सात गुना सात 49, इसको कहते हैं प्रतर राज्य, यानी जगत प्रतर कहते हैं, प्रतर राज्य नहीं जगत प्रतर, जगत श्रेणी जगत प्रतर, प्रतर यानी स्क्वेयर हुआ। अभी और एक लाइन यहाँ लिखेंगे तो ये हो गया जगत घन, जिसको हम एक लोक कहते हैं। सात राज्य गुना सात राज्य गुना सात राज्य, कितना हुआ 343 घन राज्य। अब उसको घन कहेंगे, पहले में 49 स्क्वेयर राज्य कहा था हमने, अब इसको घन राज्य कहेंगे। ये तो हुआ एक लोक, जब एक लोक प्रमाण संख्या लिखनी है तो ऐसा खाली लिख देते हैं, शॉर्ट है शॉर्ट फॉर्म में। अब असंख्यात के लिए ये ऐसी जो साइन है ये असंख्यात की, ये लोक के सामने यहाँ असंख्यात ऐसे लिख देते हैं तो इसका अर्थ होता है असंख्यात लोक। तो बार बार बड़ी शब्द नहीं लिखे तो ये शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं और फिर इसके गणित वगैरह समझाते हैं। तो पंडित टोडरमल जी ने जीव कांड कर्मकांड लक्ष्मीकार क्षपणाकार आदि ग्रंथों में से जो बहुत ये जिसको कहते डिफिकल्ट गणित है वो सब को अलग निकाल कर एक अलग अधिकार लिखा है। यानी हर एक टाइप एक जीव कांड का अपना गणित का वॉल्यूम अलग, कर्मकांड का अलग, लक्ष्मीकार का अलग और क्षपणाकार का अलग। उसमें कितने परमाणु है वो क्या क्या होते हैं, जीवन की वो संख्या कितनी है, उसके विशुद्धि कितनी है, वो पूरा गणित इस तरह से समझाया है। उसको कहते हैं संदृष्टि अधिकार। तो इसमें ऐसे सब कोड लैंग्वेज नहीं चलते गणित है। तो ये हमारा रोज सुबह चलता है, अभी वर्तमान में हमारा लब्धिकार का संदृष्टि अधिकार चलता है, जीवन कर्मकांड का तो हमने करना है। तो इसलिए वहां एक सैंपल की दृष्टि से ये साइन यहाँ बताई है, इसको कहते हैं असंख्यात लोक। अब यहाँ पूर्वकर्म की बात हम देखेंगे, अगर प्रयुक्त कर्म के बाद अपूर्व कर्म है, इसका नाम क्या है अपूर्व अपूर्व, कि जीवन के परिणाम इतने अपूर्व अपूर्व होंगे कि पहले समय में जितनी कोई जघन्य से उत्कृष्ट तक मिनिमम से मैक्सिमम तक जो कुछ रेंज होगी, दूसरे समय में किसी भी जीव के ऐसे परिणाम नहीं होंगे, वो तो उससे भी अनंत गुना विशुद्ध ही होंगे। तो पहले समय दूसरे समय या ऊपर के किसी भी समय के भिन्न भिन्न जीवों के परिणाम समान नहीं हो सकते, अपूर्व अपूर्व ही होते हैं, हर एक समय की रेंज अलग अलग होती है, इसको कहते हैं अपूर्व अपूर्व परिणाम। अभी इसकी डेफिनेशन यहां से पहले दे देते हैं, यहां समय समय प्रति विशुद्धि के परिणाम अपूर्व अपूर्व होते हैं, नीचे के और ऊपर के समयवर्ती परिणाम कभी भी समान नहीं हो सकते, अर्थात यहां अनुपुष्टि रचना नहीं होती। यानी अधिक प्रवृत्त करण में होने वाले जो चार आवश्यक है वो यहां भी होते ही है, हमने देखे थे ना विशुद्धि का दंडा सुगम्बा प्रसन्न वगैरह वगैरह, तो यहां भी होते रहते हैं और उसके साथ साथ अन्य और भी कोई बातें यहां बनती हैं, उसको और अन्य चार और आवश्यक होते हैं तो उसके नाम अभी यहां गिनाए, उसका स्वरूप तो हम पश्चात देखेंगे। परंतु ये कौन सी चार बातें यहां बनती है अपूर्व कर्म में उसकी यहां चर्चा है। तो गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाव कांडक घात। स्थिति कांडक घात क्या होता है हमने देखा था, अनुभाव कांडक घात किसे होता है किसे कहते हुए भी देखा था। ऐसा स्थिति कांडक घात और अनुभाव कांडक घात एक एक, एक स्थिति कांडक घात और एक अनुभाव कांडक घात प्राय उपलब्धि के स्टार्टिंग में शुरू में हुआ, उसके कारण स्थिति अंत तक थोड़ा थोड़े सागर की हुई थी और अनुभाव के जब तक द्विस्थानगत हुआ बरल और प्रशस्त करने में। अब यहाँ बार बार ऐसे स्थिति कांड होते रहेंगे और पूरे ग्रहण से उसका कांडक का प्रमाण वेरिएशन वो अलग वेरिएशन मैंने अनेक प्रमाण अलग प्रमाण होगा, परंतु ऐसे स्थिति कांडक घात होते रहेंगे, अनुधान कांडक घात भी होते रहेंगे, यानी एक एक छोटे छोटे अंतर्मूल में स्थिति में बहुत भारी कटौती होती जाए। सत्ता में पड़े हुए जो कर्म है उनकी स्थिति कांडक घात द्वारा घटती जाए, वैसे ही अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग भी अनुभाग कांडक घात द्वारा घटता चला जाए। चार बातें बनती है, कौन कौन सी हम सब रिपीट करेंगे, मैं बोलूंगी पहले आप रिपीट करना, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात। पहले जो हमने अदब प्रवृत्त कर्म की चार बातें देखी थी वो तो यहाँ चलती ही रहती है, यानी यहाँ विशुद्धि का बढ़ना, स्थिति बंधापकरण का होना, प्रशस्त अप्रशस्त में जो अनुभव में जो कुछ होता है वो होना, ये बातें होती भी है, उसके अलावा ये बातें और भी होती है, इन एडिशन इतनी बातें होगी कहाँ अपूर्व कर्म में, यानी अब यहाँ ये गुणश्रेणी आपने कभी नाम सुना होगा, जो गुणश्रेणी निर्जरा होती है ऐसा, तो वो क्या होती है कैसी होती है, तो उसकी चर्चा अब हम इसमें करेंगे। तो ये जो गुणश्रेणी की रचना होती है तो ये अब अपूर्व कर्म के परिणाम में ये ऐसी बातें चालू हो जाती है, ये क्या है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, पहले अनुवृत्ति कर्म की डेफिनेशन देखकर फिर आगे बढ़ेंगे। हमने अभी अभी देखा था कि अपूर्व अधकरण कहना चाहती हूँ मैं, अधकरण जो परिणाम है वो कितने हैं अलग अलग, असंख्यात लोग, ये एक लोग कहते हैं कि लोकाकाश में जितने प्रदेश है उतनी संख्या होती है, उसको असंख्यात से गुणा करो तो उसको कहते हैं असंख्यात लोग। अभी प्रत्येक जीव की अपनी अपनी जो विशुद्धि है वो अनंत गुना बढ़ती है, फिर भी अभी एक एक में से एक एक परिणाम है जो समान परिणाम है, अभी मान लो कोई पांच संख्या है तो कोई उससे चार गुना होगी, कोई पांच गुना होगी, कोई छह गुना होगी, तो चार तक सोलह होगी, तथा चार पंच बीस होगी और चार तक चौबीस होगी, इसे एक एक में से अलग अलग तीन वेरिएशन हो सकते हैं ना, वैसे यहाँ तो असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, अब अपूर्व कर्म के परिणाम इससे भी असंख्यात लोक गुना हो जाए, यानी असंख्यात लोक मल्टीप्लाई बाय असंख्यात लोक इतने हो जाते अपूर्व कर्म में आने पर, क्योंकि अलग अलग जीव तो अनंत है और स्टार्टिंग में उनके परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग थे, अब हर एक की विशुद्धि अनंत अनंत बनी तो विशिष्ट संख्या से मल्टीप्लाई नहीं होता, अनंत में तो बहुत वेरिएशन है, तो इस तरह से उनकी संख्या एक एक परिणाम में से असंख्यात लोक परिणाम उनके अलग अलग होते हैं, तो टोटल परिणाम कितने होते हैं, तो असंख्यात लोक गुणा असंख्यात लोक, ये अपूर्व कर्म में आने पर ये बातें बनती हैं। इसका स्वरूप तो हम बाद में देखने वाले हैं कि गुणश्रेणी कैसे होते हैं और किसे कहते हैं। अब अनिवृत्तिकरण इन्हें क्या उसको आप देखते हैं, तीसरा करण परिणाम जिसको कहते हैं अनिवृत्तिकरण, तीन शब्द है करण तो हम जानते हैं और अनिवृत्ति, तो निवृत्ति यानी परिणामों में भेद या असमानता को निवृत्ति कहते हैं, निवृत्ति, और अनिवृत्ति यानी परिणामों में भेद नहीं होना यानी परिणामों में समानता होना। अपूर्व कर्म में तो हमने देखे थे परिणामों में कितने वेरिएशन है, तो असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग परिणाम है जीव के, अनिवृत्तिकरण में जीव आता है तो त्रिकालवर्ती नाना जीवों के परिणामों में समानता हो जाती है, अनंत जीव अलग अलग है, गति अभिन्न भिन्न है, उनके रेशा अलग है, उनकी जो कुछ प्रोदादी चलता है जिसका उदय है वो अलग है, फिर भी यहाँ जो अनिवृत्तिकरण में आते हैं तो यहाँ जो परिणाम है यहाँ जो विशुद्धि है वो समान हो जाती है सब जीवन में, त्रिकालवर्ती अनंत जीव भूतकाल में जिसने अनिवृत्तिकरण में जो जीव आया है अभी वर्तमान में और जो भविष्य में अनंत काल बाद भी आएंगे, ऐसे जो अनंत जीवन के परिणाम जब वे अनिवृत्तिकरण में आते हैं तक समान होते हैं, यानी किसी भी एक समय का विशिष्ट परिणाम सभी जीवों में उनकी विशुद्धि समान पाई जाएगी। दूसरे समय में विशुद्धि अनंत गुना बढ़ती है, फिर भी सब जीवों की समान। तीसरे समय में और अनंत गुना बढ़ती है, फिर भी सब जीवों के परिणाम समान। यानी एक एक समय का एक एक परिणाम निश्चित है और सब जीवों का समान है, इसलिए इसका नाम है अनिवृत्तिकरण। पर यहां जितने समय होंगे उतने ही परिणाम होंगे। पहले तो हमने असंख्यात लोग असंख्यात लोग देखे थे, अपूर्व कर्म में असंख्यात लोग असंख्यात लोग परिणाम देखे थे सबके मिलकर। अभी अनिवृत्तिकरण का काल है एक अंतर्मुख, तो अंतर एक अंतर्मुख में यहां वाले जो अंतर्मुख है उस अंतर्मुख में जितने समय है उतने ही यहां परिणाम होंगे। अनंत जीवन के पहले समय का परिणाम भी विशिष्ट, उन्हीं सभी अनंत जीवन का दूसरे समय में भी परिणाम विशिष्ट। विशिष्ट है वो पहले से अनंत गुना, तीसरे समय में उससे भी अनंत गुना, पर वो सबका सेम। ऐसे अनंत जीवन के परिणाम जहां सेम होते हैं, समान होते हैं, इसलिए इसका नाम है अनिवृत्तिकरण। अब इसको करते हैं। निवृत्ति यानी परिणामों में भेद या असमानता और अनिवृत्ति यानी त्रिकालवर्ती नाना जीवों के परिणामों में समानता। यहां प्रत्येक समय के परिणाम अनंत गुना विशुद्ध होते जाते हैं, फिर भी सभी अनंत जीवों के एक एक समय के परिणाम समान पाए जाते हैं। यहां भी आयु बिना शेष सात कर्मों में गुणश्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात होते हैं, ये सभी कर्मों में होता है, है ना? अपूर्व कर्म से ये चार आवश्यक शुरू हुए थे, तंत्र गुणश्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात, ये तो दुर्लभ ही होता है, हजारों हजारों बार होगा अपूर्व कर्म में भी और अनिवृत्तिकरण में आने पर भी हजारों हजारों बार ये स्थिति कांडक घात, अनुभाव कांडक घात होते रहेंगे। इसके द्वारा स्थिति भी घटती जाती है और प्रशस्त कर्मों का अनुभव भी घटता ही चला जाता है। अभी तो सम्यक होने के पूर्व की बात है, सम्यक होना भी बाकी है। अभी तो ये अंतर्मुख जो चल रहा है परिणाम, ये तो अभी अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण में जीव है, तभी से ये बातें कर्मों में अपने आप बनती है। जीव को कर्मों में कुछ करना नहीं पड़ता, वो कर ही नहीं सकता, कर्तव्य है ना। ये बात बार बार हमारे ख्याल में आनी चाहिए, नहीं तो ऐसा लगता है कि हमें कर्म का उपशम करना चाहिए, क्षय करना चाहिए। कर्म तो परद्रव्य है, शुद्धद्रव्य है, उसमें जीव का कुछ नहीं चलता। जीव का पुरुषार्थ परद्रव्य में चलेगा कि अपने में चलेगा? अपने स्व चतुष्ट छोड़कर उसकी पर्याय कहीं बाहर जाती ही नहीं है, अपने में ही रहती है। तो इसमें ये जो भिन्नता है, द्रव्यों की भिन्नता, निमित्त नैमित्तिक संबंध वो तो पतन के लिए होता है, परंतु निमित्त कार्य में कुछ नहीं करता, ये मूल बात पकड़कर ये कर्मों के जो सिद्धांत है उसको हमको जानना। तो अनिवृत्तिकरण में हमने देखा कि सभी कर्मों के कर्मों के नहीं सभी जीवों के परिणामों में समानता होती है। अब अनिवृत्तिकरण में और क्या बातें बनती है, क्योंकि अभी तो अनिवृत्तिकरण के पश्चात सम्यक होने वाला है तो ऐसा कुछ यहां विशेष बनता होगा कि जिसके कारण अभी सम्यक हो जाएगा जीव को। तो अनिवृत्तिकरण का संख्यात बहुभाग बीत जाने पर दर्शन मूल्य कर्म का अंतरकरण और उपशम करण होता है, जिसके कारण यहां उपशम नाम पड़ा है। तो उपशम होता है ने क्या होता है, अंतर होता है ने क्या होता है, उसकी चर्चा अब अनिवृत्तिकरण में आ जाएगी। अब इन तीन कर्मों का स्वरूप विस्तार से देखते हैं। इसमें अनेक नए शब्द पढ़कर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बारंबार सुनने या पढ़ने से हम किसी भी विषय से परिचित हो जाते हैं। अब यहां तो बच्चों की बात की है, उदाहरण दिया है, आगे हम देखते हैं। 112 पेज पर तीसरा पैराग्राफ, तुम्हारा प्रश्न था गुजराती में 110। हाँ, तुम्हारा प्रश्न था कि तुम शुद्धोपयोग की तो बात नहीं कर रही हो, मात्र कर्म परिणामों के फलस्वरूप सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, ऐसा बारंबार कह रही हो, ऐसा क्यों? क्योंकि द्रव्यानुयोग के हर शास्त्र में और हर गाथा गाथा में और गाथा के हर वाक्य में ये शब्द आता है, शुद्धोपयोग से ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। और यहाँ तो कर्म परिणामों की हम चर्चा करें, अनिवृत्तिकरण के पश्चात ही समय में उपशम सम्यक्त्व प्राप्त होने वाला है, तो यहाँ शुद्धोपयोग की बात क्यों नहीं है? उसका उत्तर ट्रिब्यूनल ने दिया है, उसके आधार से हम देखेंगे। एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने इसको दिया है। अच्छा प्रश्न है, यहाँ यहाँ हम कर्णानियों द्वारा परिणामों तथा कर्मों का सूक्ष्म वर्णन देख रहे हैं। प्रत्येक अनुयोग की भाषा अर्थात वर्णन करने की पद्धति भिन्न भिन्न होती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पंडित प्रज्ञानंद जी इस विषय को इस प्रकार समझाते हैं, यानी शुद्धोपयोग की और कर्म परिणामों की बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उन्होंने समझाई है। चरणानुयोग में बाह्य क्रिया की मुख्य बातें समझाया जाता है। देखो अनुयोग चार है, उनके विषय भिन्न भिन्न है और उनको समझाने की पद्धति भी भिन्न होती है, कथन पद्धति जिसको कहते हैं। द्रव्यानुयोग में आत्म परिणामों की मुख्यता से वर्णन किया जाता है और कर्णानुयोग में सूक्ष्म वर्णन किया जाता है। द्रव्यानुयोग में स्थूल निरूपण होता है, हमें लगता है कि हम द्रव्यानुयोग के बहुत सूक्ष्म अभ्यास हैं, हमें सूक्ष्म चर्चा चाहिए, ऐसा लगता है ना? बस ऐसा लगे क्योंकि वो पर्याय से भिन्न किया, पर्यायन से भिन्न किया, तो हम सूक्ष्म चर्चा उत्तर उत्तर आए ऐसा लगता है। मतलब जिसको सूक्ष्म की रुचि है उसको कर्णानुयोग अवश्य करना चाहिए, जिसके कारण द्रव्यानुयोग में बल भी मिलता है और द्रव्यानुयोगों के सिद्धांतों की बरोबर पुष्टि हो जाती है। तो यह क्या लिखा है, द्रव्यानुयोग में स्थूल निरूपण होता है। द्रव्यानुयोग में उपयोग के तीन भेद बताए जाते हैं जिससे हम सब बिल्कुल परिचित है। कौन से तीन उपयोग? शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अब ये किस अपेक्षा ऐसे तीन उपयोग बताए? तो छद्मत्व जीवों के बुद्धि गोचर, छद्मत्व है हम तुम सब, इन जीवों के बुद्धि गोचर यानी बुद्धि में आने वाले, यानी जिसको हम जान सके ऐसे। तो छद्मत्व जीवों के बुद्धि में जो आते हैं अर्थात ज्ञान में आने योग्य परिणामों की अपेक्षा से यह कथन किया जाता है, यानी केवल यानी कि ज्ञान की अपेक्षा से यह कथन नहीं है। ये पहले में जरूरी समझ है, छद्मत्व के ज्ञान में आते हैं ऐसे परिणामों की चर्चा है होती है, तो शुभोपयोग अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग यह कथन आता है। केवल यानी कि केवल या तो सब केवल यानी सब जानते हैं, तो उनकी ज्ञान में वो शुद्धोपयोग कब करेंगे उसके बाद करेंगे, है ना? यहाँ छद्मत्व के ज्ञान की अपेक्षा से छद्मत्व जिसे जान सके ऐसे जो परिणाम है उसकी अपेक्षा से शुभोपयोग अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग ये नाम दिए जाते हैं। अब देखो आगे, इसमें धर्मानुराग रूप परिणाम शुभोपयोग है, यानी हमें स्वाध्याय के भाव आते हैं, देवदर्शन के भाव आते हैं, पूजा के दानादि के भाव आते हैं, ये हमारे ख्याल में आते हैं भाव, अपने भाव अपने ख्याल में आते हैं, तो इसको कहेंगे हम शुभोपयोग। पापानुराग रूप और द्वेष रूप परिणाम, हिंसादि के झूठ बोलने के जो अपने ही परिणाम है और पाप के जो परिणाम है, द्वेष के जो परिणाम है, वे अपने ख्याल में आते हैं कि अपने में कौन से भाव चल रहे, तो वो है अशुभ उपयोग। तथा राग द्वेष रहित परिणाम शुद्धोपयोग है, यानी जिसको हम शुद्धोपयोग कहते हैं उस काल में ये जो राग द्वेष के परिणाम होंगे उनका लक्ष्य नहीं है जीव का, उसका उपयोग कहा है कि शुद्धात्मा की तरफ है, तो वहां उसके ज्ञान में आने योग्य, वहां परिणाम नहीं है वो बात नहीं है, चौथे गुण स्थान वाला जो दो प्योर में है उस काल में भी उसको राजदेश है कि नहीं? यदि नहीं मानेंगे तो पूर्ण वितराग मानना पड़ेगा। तो शुद्धोपयोग के काल में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय नहीं रहेगा, परंतु अप्रत्यय के अनावरण, प्रत्यय के अनावरण, संज्वलन और अन्य जो कषाय है, न कषाय, उनका यथायोग्य वहां उदय रहेगा, उसका कार्य भी होगा और उतने रागद्वेष के परिणाम भी चलते रहेंगे। फिर भी वो जीव का उपयोग वहां नहीं है, अपने ही रागद्वेष के परिणामों में नहीं है, तो वहां तो शुद्धात्मा उसके ज्ञान का विषय है, उस कारण वहां उसको शुद्धोपयोग करेंगे। हाँ, वो रागद्वेष को अबुद्धिपूर्वक यानी जो जाने नहीं जाते उसको अबुद्धिपूर्वक, यानी हमारे ज्ञान में नहीं आ रहे, बुद्धिपूर्वक यानी हमारे ज्ञान में आ रहे तो बुद्धिपूर्वक या बुद्धि गोचर कहते हैं। बुद्धिपूर्वक का अर्थ ऐसा नहीं कि जिसको गुजराती में जानी हुई नहीं, ऐसे कहते हैं सोच समझ कर हम करते हैं, वो बुद्धिपूर्वक ऐसा अर्थ नहीं है। हम कोई भी परिणाम सोच समझ कर ही नहीं सकते, सोच समझ कर करते तो हम तो पूर्ण विकास को ही चाहते ना, यहाँ क्यों बैठते? सोच समझ कर ही अगर हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अशुभ तो हो जाता है परंतु शुभ तो हम सोच समझ कर करते हैं। देखो हम यहाँ आए तो अपने हमारे अपने कंट्रोल से है ना, हमारे कंट्रोल में है अपने भाव, तो जैसे अशुभ सहज आ जाता है वैसे शुभ भी सहज आता है, वो अपने खेल पेल करने से कोई बदलने वाले भय नहीं है। तो यहाँ जो धर्मानुराग हो, पापानुराग हो और राग द्वेष रहे, ऐसे अपने ज्ञान में जो आए उसकी अपेक्षा से शुभोपयोग अशुभोपयोग या शुद्धोपयोग कहा जाता है। कर्णानुयोग में कषाय शक्ति की अपेक्षा से गुणस्थानों में संक्लेश या विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा से कथन किया जाता है। कर्णानुयोग में रागादि रहित शुद्धोपयोग यथार्थ चारित्र होने पर होता है। कर्णानुयोग तो वह बताएगा जो केवल ज्ञानी नहीं जाना है, तो केवल ज्ञानी ने ऐसा जाना है कि रागादि रहित जीव कब होता है? ग्यारहवें गुणस्थान वाला, बारहवें वाला, तेरहवें वाला, जिसको यथार्थ चारित्र कहते हैं, पूर्ण वितराग। पूर्ण वितराग हुआ तब राग का अंश भी नहीं रहा, तो ग्यारहवें बारहवें वाले को कहेंगे शुद्धोपयोगी। कर्णानुयोग बारहवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग करेगा और वहां शुद्धोपयोग के फल में केवल ज्ञान हुआ ऐसा भी कहेगा। हरेक अनुयोग की भाषा अलग है, ये मोक्षमार्ग प्रकाशक में एक एक शब्द इसमें से लिया है ना, ये सब इन्वर्टेड में चल रहा है कि कर्णानुयोग में रागादि रहित शुद्धोपयोग यथार्थ चारित्र होने पर होता है और वह मोह का नाश होने पर स्वयं ही होता है। तो मोह का नाश यानी क्षीण मोह जिसको कहते हैं, बारहवें गुणस्थान की बात है। नीचे के गुणस्थानों में ऐसा शुद्ध उपयोग किस तरह हो सकता है या नहीं हो सकता? ऐसा यानी राग द्वेष रहित वाला, जहां राग का किंचित भी स्वभाव नहीं है, ऐसी बात चल रही है ना, और ये केवल ज्ञान गम्य बातें हैं। तो ऐसा शुद्धोपयोग नीचे के गुणस्थानों में नहीं होता, परंतु द्रव्यानुयोग में शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उद्देश्य दिया जाता है। ये तो बार बार हम द्रव्यानुयोग तो सब अभी परिचित है द्रव्यानुयोग से, और शुद्धोपयोग की ही प्रेरणा दी जाती है और शुद्धोपयोग के फल में ही ये सब मुख्य मार्ग शुरू होता है, ऐसा हम कहेंगे। इसलिए छद्मस्थ जीव जिस काल में बुद्धिगोचर भक्ति आदि तथा हिंसा आदि, भक्ति आदि में शुभ लिया और हिंसा आदि में अशुभ लिया, पाप लिया यानी राग और द्वेष लिया, पाप और द्वेष वो द्वेष में जाते हैं और जो भक्ति वगैरह वो राग में है। अभी शुभ राग की बात, शुभ राग और अशुभ राग में अन्य ये सब बातें, पाप रूप और द्वेष रूप, यानी इन कार्य रूप परिणामों को छोड़कर, कार्य को छोड़कर नहीं लिखा है, भक्ति के कार्य को छोड़कर नहीं लिखा, क्योंकि कार्य तो पर्दे में भी चल रहा है। भक्ति यानी मुझसे जो बोलना, बोलने की जो क्रिया है, भाषा जो चल रही है वो तो जड़ की क्रिया है। तो भाषा को छोड़कर या भक्ति को छोड़कर नहीं कहा, भक्ति के परिणामों को छोड़कर लिखा है। पंडित जी ने, गौरवंद जी ने लिखा है कि ऐसे जो कार्य रूप है, जैसे भक्ति आदि शुभ कार्य, हिंसा आदि अशुभ कार्य, वो कार्य रूप जो परिणाम है, यानी शुभ और अशुभ परिणामों को छोड़कर आत्मानुभवनादि कार्य में प्रवर्तन करता है, उस काल में उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। ये द्रव्यानुयोग द्वारा शुद्धोपयोग है ना। उस काल में भी केवल ज्ञान तुमने सूक्ष्म और आगाधिक होते हुए, परंतु द्रव्यानुयोग में उसकी विवक्षा नहीं की जाती, परंतु परमाणु की अपेक्षा से सदा ही कषायनियोग का श्रद्धा नहीं थी, शुद्धोपयोग मिलेगा। तो परमाणु कहेगा कैसे बातों में शुद्धोपयोग नहीं होगा, तो फिर हमारा झगड़ा चालू हो जाता है ना। तो हमें कौन सा जीव, कौन सी किस अनुयोग की भाषा कर रहा है, उसे पहले जानना जरूरी है। क्या परमाणु से प्रेरणा के साथ बात हो रही है, किसी भी अनुयोग में विरोध है ही नहीं है। उसकी कथन पद्धति समझने में हमारी कहीं भूल होती है, इसलिए हमें विरोध हासिल होता है। तो ये हमारी अपनी गलती है और उसको जानना हमारा कर्तव्य है। इसलिए द्रव्यानुयोग की कथन पद्धति परमाणुयोग से मिला लेकर कभी मिलती है तो कभी नहीं मिलती। अब पंडित जी आगे लिखते हैं गौतमय जी कि कर्णायोग में कषाय शक्ति अपेक्षा से कथन होता है। कषायोग की प्रवृत्ति अलग बात है और अंत में कषाय शक्ति अलग बात है। तो किसी जीव के कषायोग की प्रवृत्ति अलग होती है, जैसे व्यंतर वगैरह हम देखते हैं, कथाएं सुनते हैं कि वो संग्राति का नाश भी करे, प्रवृत्ति करके किसी बुद्धि होती है और किसी को कुछ उसके अंदर उत्सर्ग भी करे, ऐसे आदमी सुनते हैं उत्सर्ग भी करे, यंत्रादि दो आकर उत्सर्ग करते हैं, प्रार्थना कर कमर में उत्सर्ग किया, तो कमर की कौन सी रक्षा कर लेंगे, हाँ में तो तीन लक्षण ही होती है, बहुमत्रिक देवों में तीन लक्षण है। तीन लक्षण में यदि ये कषाय शक्ति उसके अर्थ है, प्रवृत्ति तो बहुत बड़ा है, तो प्रवृत्ति जो है इसका जो कार्य देखने में आ रहा है, तो ऐसा देख रहा है कि ये भूमि के ऊपर खड़े करे और तीन लक्षणों की पीठ चल रही है, बराबर। अब ये जो पेड़ पौधे है वो क्या प्रवृत्ति करे, फिर दूसरे को लकड़ी दे तो उनकी दिशा कौन सी होती है, कृष्ण रूपी नशुभ दिशा है। तो कषाय शक्ति अलग बात है और कषाय की प्रवृत्ति अलग बात है। और दूसरी बात, सर्वार सिद्धि के जो देव है उनका अनुष्ठान कौन सा है और वे कैसे उनकी प्रवृत्ति कैसे, शुक्ल दशा है। इतने मतलब परिणाम है कि भगवान के समाचार में आने के भी भाव नहीं होते, शक्ति है उनके पास, सैदन होने के लिए आएंगे, परंतु ये ऊपर के जो सवाल सिद्धि वाले जो है वो नहीं आएंगे, बराबर। अब उनके परिणाम कैसे हैं, ब्रह्मचर्य से रहते हैं, तेजी से तीस साल तक कपड़ी चर्चा करते हुए काम होता है। अब कई पंचम महीने व्यक्ति मनुष्य है, गृहस्थ घर में रहता है, व्यापार धंधा करता है, युद्ध में भी जा सकता है, तो ये यहां युद्ध देख रहा है और वहां वो कपड़ी चर्चा कर रहे हैं, तो अच्छा प्रवृत्ति उसकी बड़ी लगती है, परंतु उसके तो एक दशा चौधरी का अभाव है अनुसार बनने, और इस ग्रोथ के दो प्रकार के क्रीड़ा, ये प्रवृत्ति और कषाय शक्ति में अंतर है। हम तो दूसरों से तो डायरेक्ट से नापना चाहते हैं, ऐसी बात है। तो कषाय की प्रवृत्ति अलग बात है और कषाय शक्ति अलग बात है, इसी को यहां समझाया। आगे बढ़ते अगले आगे से पेश करें ना, एक पेश होने के बाद पंडित प्रजानंद जी कहते हैं, अभी हमने सरवाल मुझे अलग लिया पंचमानुष्ठान मुक्ति के बाद देखी थी। कषाय की भांति योग के बारे में भी ऐसा ही है ना, योग की प्रवृत्ति अलग बात है और कर्माकर्षण योग शक्ति अलग बात है। हम देखते भी ये बहुत ऐसे कुछ इंडिकेट करता होगा, इधर ये दौड़ता होगा, ये इससे बहुत योग है और कोई ऐसा निश्चय बैठा है इसके योग कर ऐसा लगता है। तो योग की प्रवृत्ति अलग बात है और कर्माकर्षण, क्योंकि योग के द्वारा ही कर्मों का आकर्षण होता है, कर्मों का जो बंध होता है वो योग के कारण बंध होता है। तो जितना योग तीव्र उतना कर्म ज्यादा आता है, जिससे हमने देखा था कि योग के कारण प्रकृति और प्रवेश का बंध होता है, जितना योग अधिक उतने प्रदेश यानी कर्म परमाणु अधिक मात्रा में बनते हैं। तो इसको कहते कर्माकर्षण शक्ति, कर्म को आकर्षण करने की शक्ति। तो किसी जीव के मनोवचन काया की प्रवृत्ति यानी क्रिया बहुत दिखाई देती है, परंतु कर्माकर्षण शक्ति की अपेक्षा से उसके योग अधिक है, कम दिखे, बहुत थोड़ी दिखाई देती है, परंतु कर्माकर्षण की शक्ति अधिक है। इसके विपरीत किसी जीवन की यह प्रवृत्ति यानी प्रयत्न अधिक दिखाई देते हैं, परंतु कर्माकर्षण शक्ति अल्प होने से अल्प योग है। अभी केवल भगवान कितनी क्रिया कर रहे हैं, हरेंद्र भगवान पद्मासन स्थित है ना, तो केवल भगवान गमना भी क्रिया से रहित है, उन्हीं योग अधिक है। और जीव भी अधिक जीव गमना भी करते हैं तो भी उनके योग अल्प है, क्योंकि जीवियों से पंचेन्द्रियों में योग की अधिकता का है। तो अरिहंत भगवान को स्थित है, पद्मासन है, निश्चय ध्यान में मग्न है, अभी वो कुछ अन्य चीजें वहां नहीं चल रही है, फिर भी उनका योग अधिक है। और जीवियादिक जीव जीवियादिक जीवनी तीनिये चतुर्दारी सब गमन कर रहे हैं, कुछ तीन की क्रियाएं चल रही है, वचन चल रहे हैं, फिर भी उनको योग अल्प है। कर्मानुयोग में परिणाम और कर्मों की अवस्था का सूक्ष्म विवेचन किया जाता है, इसके अनुसार प्रयत्नपूर्वक कोई भी उद्यम हो नहीं सकता। कर्म का उपशम होता है, किसी लंबा उद्यम होता है, प्रकृति लंबा उद्यम होता है, तो उसको जानकर हम कोई इसी पुरुषार्थ वैसा कुछ करना चाहते हैं, तो ये तो कुछ अपनी बात की बात, ये तो ज्ञान का ये है ना। तो कर्मानुयोग करकर उसके अनुसार उद्यम नहीं कर सकते, उसके अनुसार उद्यम नहीं किया जाता। कर्मानुयोग में यथार्थ वस्तु स्थिति बताई जाती है, उसमें आचरण की मुख्यता नहीं होती। कर्मानुयोग की बात हो रही है, चरणानुयोग द्रव्यानुयोग आदि के उद्देश्यानुसार जो चलेगा, यानी द्रव्यानुयोग के सिद्धांत जो समझेगा निर्णय करेगा, और चरणानुयोग के आज्ञानुसार जो चलेगा उसके निमित्त से जो कार्य होना होगा वह स्वयं होगा, उसमें अपना कुछ नहीं चलेगा। कर्मों में जो कुछ बातें करनी है वो स्वयं होगी, जैसे कोई कर्म का उपशम आदि करना चाहे तो किस प्रकार होगा, जो स्वयं तत्वाधिकम का निर्णय करने का उद्यम करेगा उसके निमित्त से सहज ही उपशमादि सम्यक्त होता है। उपशमादि यानी उपशम सोपशम या क्षायित जो सम्यक्त है वो स्वयं होता है। जीव को क्या करता है मेरे, फिर से ये पंडित जी का वाक्य है, जो स्वयं तत्वाधिकम का निर्णय करने का उद्यम करेगा, यानी अभी उद्यम कौन सा रह गया, तत्व का निर्णय करना, तो तत्व निर्णय करना यही एकमात्र उद्यम है। और वह करने से स्वर्णे व कर्म में उपशम सोक्षम या क्षय यथायोग्य जो होना है वह स्वयं हो जाता है। इसलिए कर्मानुयोगानुसार जैसा है वैसा जान लेना, परंतु प्रवृत्ति तो बुद्धि गोचर जिससे भला होगा वैसी कर। सारे ही अनुयोग सारे कार्य कर्मानुयोग से तो हम जैसा है वैसा ज्ञान करते हैं कि जब जीव ऐसे परिणाम करता है तो ये कर्म में यह बातें अवश्य बनती ही है। ये तो ज्ञान कर लिया हमने, अब क्या करना? कुछ नहीं करना। ये द्रव्यानुयोगों के सिद्धांत के अनुसार कुछ विचार करना, अब कर्णानुयोग की आज्ञा में रहना। जैसे जहां जो जिस भूमिका में जैसा जहां कर्णानुयोग का उद्देश्य है वैसा आचरण करना, और द्रव्यानुयोग के सिद्धांतों को आत्मसात करना में उस पर विचार करना। यह संपूर्ण विवेचन मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आठवें अधिकार में है। तुम पूछोगे प्रश्न ही ना सामने वाली जीवन का, यदि प्रयत्न अथवा पुरुषार्थ द्रव्यानुयोगानुसार तत्व जानकर तत्व निर्णय करने का ही है तो कर्णानुयोग जानना ही क्यों? हमारा सबका प्रश्न। बिना वजह समय और शक्ति का अपव्यय क्यों करे? क्योंकि आज करें ना फास्ट लाइफ हो गया, हमारे पास टाइम नहीं है। पैसा भले आप मांगो उतना देने के लिए तैयार है, परंतु टाइम देने के लिए किसी के पास है ही नहीं टाइम अवेलेबल। देखिए हमें जिसमें रुचि है ऐसे मोक्ष मार्ग का सर्वांगीण स्वरूप जानने की जिज्ञासा भी सहज ही होती है। दुनिया भर की अन्य घटनाओं को जानने का रस कम होकर सत्य स्थिति जानने का उत्साह होना स्वाभाविक है। जिन्हें क्रिकेट में रुचि है क्या उन्हें मैच किसने जीती इतना ही सुनकर समाधान होता है? वे लोग तो दिन भर टीवी के सामने बैठकर शुरू से अंत तक मैच देखते हैं, इतने से मन नहीं भरता। वे दोबारा हाईलाइट देखते हैं, उससे भी मन नहीं भरता, तो पुनः पुनः उसी विषय पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। उसमें रुचि है। मेरे जैसे किसी को प्रश्न उठता है कि एक गेंद को उछालने में इतने सारे खिलाड़ी दौड़ धूप करते हैं और उन्हें देखते हुए लाखों जीव ऊपर नीचे होते हैं, हर्ष शोक मनाते हैं, ऐसा उसमें क्या है? उस पर कोई क्रिकेट रसिक उत्तर देगा, और रसिकेश कवि के निवेदनम शिरसि मालिक मालिक मालिक। ये तो प्रसिद्ध श्लोक है कि जो साहित्य में कुछ नहीं जानता ऐसे जीवन को साहित्य कार्य क्या है सिखाना, ये प्रभु मेरे नसीब में मत लिखे, ऐसा वहां संस्कृत का एक श्लोक है। परंतु यहां तो नीचे पकड़ेगा, जिसे कर्णानुयोग में रस या रुचि नहीं है ऐसे जीवन को ही उन्हीं के कल्याण हेतु कहने का मन होता है कि हे जीव तुम क्या कर रहे हो इसकी तुम्हें खबर नहीं। अनादि कर्मबंधन में फंसकर निरंतर कर्मबंधन का ही कार्य तुम कर रहे हो। देखो इसमें से छूटने का मार्ग अत्यंत सरल सुलभ और सरल है। सुनो तुम तो केवल तत्व विचार आदि का कार्य करो, कर्म में ये सारे अवस्थान तो स्वयं हो गए, तुम्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, तुम्हारे कर्म बंधन ढीले पड़ेंगे, पूर्ववत पाप कर्म शक्तिहीन होंगे, उनकी सिद्धि भी घटेगी, परंतु पुण्य कर्मों की शक्ति बढ़कर तुम्हें उनका फल भी मिलता रहेगा तथा उनका भी नाश होकर तुम्हें शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होगी। कर्णानुयोग जानने जिस विषय में रुचि है उस विषय का अलग अलग एंगल से सभी ओर से उसका अभ्यास या उसके जानने की हमें जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। यहां हम कर्णानुयोग के आधार से कर्म परिणामों की चर्चा कर रहे हैं। पूर्वोक्त चार लब्धि पूर्वक जीव कर्म परिणाम मानता है, अर्थात जैसे न चाहे की भाषा में कहना हो तो बहुत बार हम कर चुके प्रवचन साल में अन्य अन्य ग्रंथों की जो सीताएं लिखी है जैसे आचार्य ने, उसमें आता है ये बार बार कि अध्यात्म भाषा में उन्होंने दोनों भाषा का प्रयोग किया। हाँ द्रव्यानुयोग की भाषा और कर्णानुयोग की भाषा, तो अध्यात्म भाषा और आगम भाषा, तो अध्यात्म भाषा में निज शुद्धात्म भावना रूप सविकल्प स्व संवेदन ज्ञान द्वारा और आगम भाषा में अधम प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन तीन करण परिणामों में द्वारा आत्मा में लीन होता, एकाग्र होता है। आपका प्रश्न है ना, सभी करके मेरे चलते ही बात, अरे अध्यात्म भाषा है कि निज शुद्ध आत्मा में एकाग्र हो जाए, शुद्धोपयोग और आगम भाषा में तीन करण परिणाम कर। क्रिया एक ही है, उसको डिस्क्रिप्शन उसको बताने के दो अलग अलग तरीके। यहां भावना का अर्थ है इस रूप होना, एकाग्र होना। हम समझते कि भावना यानी इच्छा करना, शुद्धात्मा की भावना भाव है। तो हम क्या करते हैं, शुद्धात्मा का ही नाम लेते रहते हैं, ये भावना भावना में उसका इच्छा करके रहना, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। भावना है उस रूप भवन होना, उस रूप होना, परिणमना, यानी निज शुद्धात्मा में लीन हो जाना, एकाग्र होना, उसको कहते भावना। मात्र इच्छा करते रहना यह भावना शब्द का अर्थ नहीं है। पंडित डोडोकर जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं, करण लगने वाले जीव का बुद्धिपूर्वक इतना ही उद्यम होता है कि वह सत्य विचार में उपयोग को सद्रूप होकर लगाता है। हमको करण परिणाम मानना है तो क्या करना है, वो कुछ करने लगने की बात ही नहीं है। जो तत्व का उद्देश्य सुना है, जिस तत्वों का हमने निर्णय किया है, उसके ही बारे में जीव बारम्बार उसके विचार उसके चलते रहते हैं। अपने आत्मा की अपूर्व ऐसी महिमा भाजित होने लगती है, तो उसके कारण क्या होता है कि उसके कारण प्रति समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं और तत्वोपदेश का विचार निर्मल होते जाने से थोड़े ही काल में उसे तत्व श्रद्धांगुप सम्यक को होता है। कर्मों में ये जो बातें बनती है सहज स्वयं में वो होती है। मिथ्या का उदय देखा वो भी मिल जाएगा, जीव के परिणाम में मिथ्या को समंतरित हो जाएगा। उसने क्या किया, उसके लिए तत्व विचार में उपयोग को लीन कर दिया, सुदृढ़ होकर वो उसका परिणाम चालू हो जाता है। इन परिणामों की तारतम्यता केवल ज्ञानी जानते हैं और उनका निरूपण करना नियोग में किया है। ये भी पंडित जी ने सब लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से ये सब उद्धरण है। अब हम एक एक करण परिणाम का स्वरूप विस्तार से देखेंगे। तत्व विचार और तत्व निर्णय में उपयोग लगता है तब जीव के परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध होते जाते हैं। हमें लगता है बाहर में कुछ क्रिया करेंगे, शुभ परिणाम करेंगे तो उनको संबंध होगा, तो उन्हें कर्म मालूम नहीं है कि ये तत्व विचार करना इससे सबसे उच्च जाति का पुण्य परिणाम है। क्योंकि बाहर कुछ क्रिया करके हमें संबंध में थोड़ी मदद मिलेगी, हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा वो करना चाहता है। क्योंकि प्रश्न भी आते ना, जब तक संबंध नहीं होगा तब तक क्या करना, शुभ तो करना चाहिए ना, यानी हम चाहे जैसा शुभ कर सकते हैं, हमको करना चाहिए, यानी चाहिए कि मैं अभिप्राय कहां पड़ा होता, क्या करना चाहिए, शुभ करना चाहिए। जब तत्व विचार करता है तो तत्व विचार में तो एक ही तत्व विचार चलते कि शुभ से कुछ नहीं होने वाला, तो भी शुभ हो रहा है, दैट स्टिल भी शुभ है ना। तत्व विचार जो शुभ को जो मेरे स्वीकार कर रहा है, ऐसा जो वहां भाव चल रहा है, वो भाव शुभ है कि अशुभ है। जब तक अभी शुद्ध नहीं प्रकट हुआ है तब तक ये शुभ नहीं चल रहा है, यानी जो तत्व निर्णय है, तत्व विचार है, वो उच्च जाति का शुभ भाव ही चल रहा है। तो और कौन सा शुभ भाव करना चाहते हैं कि जिससे संबंध जल्दी होगा, तो पहले पहले ये स्वीकारना है कि शुभ भाव से संबंध होने वाला नहीं, राग से विक्रांता होने वाला नहीं है। मान्यता में क्या पड़ा है कि राग करते करते वितरक्ता हो जाए, तो ये मान्यता में पहले श्रद्धा में स्वीकार है और ये सारा तत्व निर्णय द्वारा ही होगा। इस ज्ञान में जो तत्व विचार चलते हैं इसी के द्वारा ये सब कार्य होने वाला है, इसी के द्वारा सम्यक की प्राप्ति होने वाली है। देखिए ये परिणाम अंतर्मोह विशुद्ध होते जाते हैं। हमने विशुद्ध लब्धि में विशुद्ध पढ़ने की बात की थी और अज्ञान करण लब्धि में भी विशुद्धि कही जाती है। पहले तो साता वेदनी आदि प्रकृतियों के बंध के कारण भी परिणामों को विशुद्ध परिणाम कहा था। अब यहाँ जो विशुद्धि है वह तत्वज्ञान संबंधी निर्मलता जानना, श्रद्धा संबंधी निर्मलता जानना, यहाँ करण लब्धि में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय उत्तरोत्तर मंद मंदतर और मंदतम होते जाते हैं, उनकी अपेक्षा से विशुद्धि समझ। पहले तो मात्र ये धाति कर्मों में भी कुछ विशेष नहीं होता था, अघाति कर्मों में ही पुण्य प्रवृत्तियां बनती थी। अब ये जो विशुद्धि अनंत गुना बन रही है और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी अनंत गुना अनंत गुना उसका अनुभव करता चला जा रहा है, करण परिणाम में है निजी। हमने पहले देखा था कि चारों गति वाला दैव्य मिथ्यादृष्टि जीव प्रथमोक्षम समय को प्राप्त कर सकता है, उसमें कोई सातवें नरक का नारकी होगा जिसके कृष्ण वेशा होती, कोई नैवे ग्रेवे स्वर्ग का मिथ्यादृष्टि होगा जो शुक्ल वेशा वाला होता है, कोई मनुष्य या तीज होगा जिनके पीत पद्म या शुक्ल वेशा होती है। यहाँ अपनी अपनी लेशा तो कायम रहती है परंतु अशुभ लेशा वालों के संकलेश घटते हैं तो शुभ लेशा वालों की विशुद्धि बढ़ती है। विशुद्धि का बढ़ना है जो अशुभ लेशा में उनके संकलेश का घटना और जो ऑलरेडी शुभ यानी शुभ लेशाओं में उनकी विशुद्धि बढ़ना, उनके कषायों के स्थान अपने पूर्व परिणामों से घटते हुए होते। फिर भी अलग अलग लेशाओं में है, फिर भी उन समस्त जीवों में तत्व ज्ञान की निर्मलता और विशुद्ध परिणामों में प्रारंभ में समानता या असमानता होती है जिसका नाम क्या था अगर प्रवृत्तिकरण, और अनुवृत्तिकरण में सबके परिणाम एक से विशुद्ध होते हैं समान होते हैं, क्योंकि अभी तत्व श्रद्धांत तो सबका समान होगा ना, क्या सम्यक्त्व में भी कोई डिग्री अलग अलग हो, जैसे कषाय में अलग अलग डिग्री थी वैसे सम्यक्त्व में डिग्री अलग अलग होगी। तो जिसको मैं जिसको स्वीकार करना है उसको मैं भी स्वीकार किया, उसमें डिग्री का क्या सवाल है ना, तो ये परिणाम एक से हो जाते हैं। अब प्रवृत्तकरण में ऊपर और नीचे के समयों में समान परिणाम होते हैं, उसे अनुपृष्टि रचना कहते हैं। उसका स्वरूप और हम देखेंगे, पहले तो हमने शॉर्ट में देखा है, अब इसको और विस्तार से देखते हैं। तुम टीवी पर क्रिकेट मैच देखती हो, उस मैच का वर्णन यानी कमेंट्री करते करते पूर्व में खेली गई अन्य मैचों के साथ उसकी तुलना करके उसका विवरण किया जाता है। कोई टीम चौथे ओवर तक जितने रन निकालता है उतने ही रन, कोई टीम तीसरे ओवर तक गई दूसरे ओवर तक तो कोई पहले ही ओवर में करता है, उनकी धाव संख्या में यानी रन्स में इस प्रकार की समानता हो सकती है। उसी प्रकार यहाँ त्रिकालवर्ती अनंत जीव, यहाँ तो भूत भविष्य वर्तमान सभी जो अधप्रवृत्तकरण मानते हैं उनके परिणामों में प्रथम द्वितीय आदि समयों में समानता हो सकती है। ये तो हमने बात देखी थी अगले पैराग्राफ में कि क्रिकेट में तो भूतकालीन मैचों के साथ कंपैरिजन होती है और यहाँ तो त्रिकालवर्ती सभी जीवों के परिणामों के साथ तुलना होगी, उसका आगे का करेगा। अगर प्रवृत्त के अंतर्मूर्त काल के प्रति समय में परिणामों की संख्या विशिष्ट होती है, उसमें पहले समय में जितने परिणाम हो सकते हैं उनसे दूसरे समय में विशुद्धि तो अनंत गुना बढ़ती ही है परंतु परिणामों की संख्या में विशिष्ट वृद्धि होती है। हम अंतर्मूर्त काल है ना, हम मान लेते हैं कि अधिक प्रवृत्तकरण का काल 16 समय का है, तो प्रत्येक पहले समय में विशिष्ट परिणाम है, मान लेते हैं 162 परिणाम, तो हरेक की अपनी अपनी विशुद्धि बढ़ जाती है परंतु उसमें और कुछ अधिक परिणाम हो जाते बढ़ने पर उसके परिणामों की संख्या बढ़ जाती है, तो हम मान लेते हैं कि 162 से 166 है। उनकी विशुद्धि और बढ़ेगी। तो उनमें तो विशुद्धि तो बढ़ती है, परिणाम में भी और संख्या बढ़ जाती है। तो उनकी परिणामों की संख्या बढ़कर 166 में और 4 बढ़ गए तो 170 हो गए। इस तरह से विशुद्धि तो अनंत गुना बढ़ती है और परिणामों की जो संख्या है तो कुछ अधिक बढ़ती है। अभी तो इतना ही जाना है, थोड़ी आगे बढ़ेंगे। तीसरे समय में विशुद्धि उससे भी अनंत गुना होती है और उनकी संख्या में वैसे ही समान वृद्धि होती है। प्रति समय संख्या में समान वृद्धि होती जाती है, इसे चय कहते हैं। ये चय शास्त्रीय शब्द है, रत्ना खास यानी डिफरेंस। जितनी वृद्धि हुई समान वृद्धि हुई, हम मान लेते चार चार से वृद्धि हुई तो चार को हम चय कहें। इतनी बढ़ोतरी हुई ना उसमें, इतना डिफरेंस हुआ तो उसका नाम है चय। इस तरह सभी समयों के कुल परिणामों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण होती है। अब हमने माना था कि पहले समय में 162 परिणाम है, दूसरे समय में 4 बढ़कर 166 हुए, तीसरे समय में 170 हुए, ऐसे करते 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 16 समय तक 4-4 बढ़ते गए। तो पहले से 16 समय तक की सबकी टोटल करना, उन सबकी टोटल कितनी होती है ये यहाँ पेज नंबर आगे लिखा है। होती है 122 पेज पर इसका टेबल लिखा है। गुजरात में आगे पीछे होगा थोड़ा। उस टेबल में इतना ही देखना कि समय जहां लिखा है नीचे से ऊपर टेबल पढ़ना। हमेशा टेबल ये जो होते हैं करना नहीं होते, नीचे से ऊपर पढ़ना। नीचे लिखा है समय, तो समय के कॉलम में लिखा है 1-2-3-4-5-9-16 तक। परिणाम कुंज यानी टोटल नंबर ऑफ परिणाम कितने हैं, तो पहले समय में 162 है, दूसरे में 166 है, 4-4-4-4 बढ़ते बढ़ते 16वें समय में 222 हो गए। बराबर यहाँ तक हमने, अब इन जो इनकी सबकी टोटल 162 से लेकर 222 तक इन सबकी अगर टोटल करेंगे तो 3072 आते। अब आगे की बात तो अभी नहीं पढ़ना, हाँ वो 40 वगैरह क्या है उसकी बात समझेंगे। अब यहाँ फिर अपने पेज पर आते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, वास्तव में अब प्रवृत्तकरण का जो अंतर्मूल काल है उसके सभी परिणामों की संख्या की अगर बात की, हमने पहले देखा था यहाँ लिखे ना असंख्यात लोग इतने पर, जिसको अभी अभी हमने 3072 देखे, एक्चुअल में कितने असंख्यात लोग कितने परिणाम टोटल पहले समय से लेकर अंतिम समय तक के टोटल परिणामों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है। इसका सविस्तार वर्णन जीव कांड लब्धिचार आदि ग्रंथों में किया है, हम यहाँ पूर्ण रूप से उसकी चर्चा करेंगे। जिसको अधिक जानने की रुचि है वो मूल ग्रंथ में जरूर पढ़ना है। इसका 5 मिनट है, लेट चालू हो। अब ये अर्थ संदृष्टि किसे लेना है, इसको एक 4 लाइन हम पढ़ करके बंद करते हैं। यहाँ हम काल्पनिक संख्या लेकर इस अदर प्रवृत्तकरण की अनुपृष्टि रचना को समझेंगे। जैसे हमने 16 समय माने हैं, पहले समय में 162 परिणाम माने हैं, ये तो काल्पनिक संख्या है। क्यों काल्पनिक संख्या, एक्चुअल फिगर लेंगे तो कुछ समझेगा ही नहीं अपने को। काल्पनिक संख्या समझने में भी पसीना छूटता है, तो ये एक्चुअल फिगर लेंगे तो समझेगा नहीं। तो पहले तो काल्पनिक फिगर्स लेके समझेंगे और फिर एक्चुअल जिसको समझना है वो अर्थ संदृष्टि अधिकार में से जान सकते। यहाँ लिखा देखो कि काल्पनिक संख्या लेकर इस अदक प्रवृत्तकरण की अनुपृष्टि रचना को समझेंगे। काल्पनिक संख्याओं द्वारा गणित को समझना अंक संदृष्टि कहलाता है, उसको अंक संदृष्टि कहते हैं। और यथार्थ संख्याओं द्वारा उसे समझना अर्थ संदृष्टि कहलाता है, ये अर्थ संदृष्टि चलती है यहाँ। तो ये जो इसमें कौन सी अंक संदृष्टि अगर प्रवृत्त करण में, उसी अंक संदृष्टि के बाद हम दोपहर में करेंगे, 3:30 बजे यहाँ मिलेंगे।